वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय तीसरा और श्लोक संख्या 16। यम वै न गोभीर मनसा सुभीर्वा रदा गिरा वासुभृतो विचक्षते आत्मानं मनंतरदि संतमात्मना चक्षुर्य वैथा कृतयतस्ततः परम् यम जिसको वै निसंदेह न नहीं गोभी इंद्रियों द्वारा मनसा मन से अशुभि प्राणवायु द्वारा वा अथवा रदा विचारों से गिरा शब्दों से वा अथवा अशुभ्रुत जीव विचक्षते देखते या जानते हैं आत्मानं परमात्मा को अंतरदि हृदय के भीतर संतम विद्यमान आत्मानं जीवों के चक्षु नेत्र यथा जिस तरह एव निसंदेह आकृतय शरीर के विभिन्न अंग ततः उसकी तुलना में परम उच्चतर। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को देख नहीं सकते उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते जो हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। न तो इंद्रियों से न मन से न प्राणवायु से न हृदय के अंदर के विचारों से न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चय कर सकते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में आँख को देख सकने की शक्ति नहीं होती किंतु आँखें शरीर के विभिन्न अंग भागों को की गति का निर्देशन करती है। पांव इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आंखें देखती हैं कि उनके सामने क्या है और हाथ स्पर्श करता है क्योंकि आंखें स्पर्श करने योग्य वस्तु को देखती हैं। इसी तरह प्रत्येक जीवात्मा उन परमात्मा के निर्देशानुसार कार्य करता है जो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि भगवद्गीता के 15 अध्याय के 15वें श्लोक में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञापनम च, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति के लिए निर्देशन करता हूँ। भगवद्गीता में अन्यत्र कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा के रूप में परमेश्वर हृदय के भीत में स्थित रहते हैं। जीव परमात्मा की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। परमात्मा प्रत्येक क्षण कर्म करता है किंतु जीव अपने इंद्रियों के संचालन द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्य को नहीं समझ सकता। आँखों तथा शारीरिक अंगों का उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते हैं तो आँखों की सहायता के बिना आगे चल सकते हैं किंतु यह असंभव है। यद्यपि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता किंतु परमात्मा का निर्देशन आवश्यक है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया च चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं वै न गोभीर्न मनसा सुसभिर्वा हृदागिरा वासुभृतो विचक्षते। आत्मानम् अन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यै यथा कृत यहस्ततः परम्। इस श्लोक में अंतर्यामी परमात्मा की स्थिति तो बताई है, लेकिन परमात्मा को दिखना कुछ और बात है। समझना ठीक होता है, जैसे कि पढ़ने की हद समझ होती है, समझ की हद है ज्ञान, और ज्ञान की हद होती है हरि नाम। फिर भी यहां पढ़े से नहीं होता, समझदारी से भी हम भगवान को नहीं देख पाते, अंतर्यामी परमात्मा को नहीं देख पाते। और भगवान के नाम भी ना अंतर सूझ भी नहीं आएगी कि अंतरात्मा में भी आंखें होती हैं। अपने ही अंतरात्मा, भगवान के अंतरात्मा की तो है ही, वो सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते, इतना अंतर है। जबकि भगवान के नाम में शक्ति है, और जो व्यक्ति भगवान का नाम में विशुद्ध उच्चारण के भगवान की स्थिति इत्यादि सब कुछ जानकर भगवान के नाम की शक्ति द्वारा भगवान ये अंतरात्मा के समक्ष खड़ा होता है, तब वो परमात्मा को देखता है। और इस समय विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश्वर। ये स्थिति नहीं आती, और ये स्थिति अन्य ढंग से कैसे आती है वो भी श्रीमद् भागवतम बताता। लेकिन हम चाहे कितना अभ्यास करें, कितना प्रवचन करें, नायम आत्मा न प्रवचने न लभ्य अथवा बहुना श्रुते न वा। यम लभ्यते, किसको मिलता है, तत् विवृणुते तनुस्वाम, खुद अपनी मर्जी से वो परमात्मा अपने आप को उसके सामने खुलम खुला प्रकट नहीं होते, तब मिलते ही। यानी कि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान को हम मस्का नहीं मार सकते हैं, हम तो लाच रिश्वत भी नहीं दे सकते हैं। जब भगवान नहीं है उनको ही देनी पड़ती है, क्योंकि हम ना समझ हैं कि ये भगवान नहीं है और हो भी कैसे हो सकते हैं, वो भी नहीं जान। लेकिन हम छोटी बुद्धि से छोटे काम के लिए अपनी सारी चेतना का व्यभिचार करते हैं। जो चेतना का व्यभिचार करने के लिए हमेशा भौतिकवादी बना रहा है और ऐसे ही कार्यों में जुटा रहता है, तो उसे तो भगवान की बातें समझ में भी नहीं आएगी। हाँ, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी सॉरी यमराज जी बोलते हैं, हाँ, किसको? यमदूतों को सलाह देते हैं, कि मेरा जो मालिक है यमराज के, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, मेरा जो भगवान है, उसको समझ पाना कितना दुष्कर, जो देख भी नहीं पाएंगे। यमदूतों में स्वाभाविक भगवान के ही तो जीव हैं, अंश हैं, तो स्वाभाविक इच्छा होती है, लेकिन सब अपनी अपनी मर्यादा में काम करें, तो अपने अपने ही जो प्रमुख नेता होता है इनको अनुसरना होता है। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तएवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। इसलिए जो अगवानी करते हैं इनको आदर्श बनना पड़ता है, क्योंकि सभी दूसरे जो मूल जीव हैं, जो अभिलाषा व्यक्त करते हैं जीवन की सफलता की, कि भाई अंतिम सफलता तो भगवान के पास जाने में है, लेकिन जब पहचान भी नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, तो लोगों को विश्वास कैसे होता। लेकिन ये पद्धति मैं पूर्व बताए अनुसार पूर्ण आश्वस्तता कब आती है? जब हम शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, तभी आश्वस्तता मिलती है, यानी कि हमें गारंटी मिलती है। और ये सब शिक्षण भगवान देते हैं, भगवान के विशुद्ध भक्तों द्वारा ये शिक्षण मिलता है। द्वादश महाजन में यमराज भी विशुद्ध भक्त हैं, विषम स्थितियों में भी भक्त की कोई स्थिति में बदलाव नहीं आता, जैसे कि चित्रकेतु की स्थिति में पार्वती ने श्राप दिया फिर भी बदलाव नहीं आया था, और शिव जी ये स्थिति को जानते हैं और मना करते हैं कि तू उसे श्राप नहीं दे, ये भक्त है। तो शरीर नहीं समझता, जो शरीर देने वाली पार्वती भी नहीं समझ पाती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है, ये तो शिव जी हैं इसीलिए पता चलता है। लेकिन वहां तक के लोग ना समझ रहने की गलती कर सकते हैं। तो यहां ये बताया है कि जैसे आंखें दी गई हैं सब कुछ देखने के लिए, सत और असत का परिचय करने के लिए पांच पांच इंद्रियां दी हैं, लेकिन आंख की बात है, देखने की बात है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। जब भगवान कहते हैं वो तो विशुद्ध भक्ति द्वारा क्रमशः क्रमशः होता है, जानकारी इतना ही नहीं देखना भगवान को, और भगवान के अंतर्गत लीलाओं में प्रवेश करना, ये भी संभव है, लेकिन देखने का तरीका, समझने का तरीका जो बताते हैं उसके अनुसार ही होता है, अन्यथा नहीं। तो यहां यमराज कहते हैं जैसे आंख को दूसरे कोई अंग नहीं देख पाते, दूसरी इंद्रियां भी नहीं देख पाती आंख को, क्योंकि यदि दूसरी इंद्रियां भी आंख को देख पाती तो आंख की आवश्यकता होती ही नहीं। आंख दी गई है सर्वत्र देखने के लिए। इसी तरह हमारी कोई भी क्रियाएं पांच इंद्रियों द्वारा हो रही है, उसके द्वारा ये अंतरात्मा को देख पाना मुश्किल है, असंभव है। न ज्ञाने न चेज्जया, बहुत सारी हम ज्ञान की भी मिलकत इकट्ठी कर ले, फिर भी भगवान को देख पाना ज्ञान के बाहर की बात है। ज्ञातुम हो सकता है पर दृष्टुम भी हो सकता है, जब भगवान कहते हैं तो वह कौन सी आंख की बात करते हैं, कैसे हमें आंख, जो अपनी चमड़ी की आंख बहुत मर्यादा वाली है, देखने की शक्ति धराती है, और भगवान जो भौतिक नहीं है, भौतिक चमड़ी की आंख नहीं दिखाई देते हैं, वो स्वाभाविक है, और उसको हम भगवान के प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व बताए हुए अर्चा विग्रह के लिए हम देखने आते हैं। दिखने में भी अंतर है। आप देखोगे यहाँ जल्दी जल्दी आते हैं, चले जाते हैं, बाहर निकले, न तो बारीकाई से कोई ध्यान देता है। जो भगवान की बातें जैसे उत्तम श्लोक में बताई जाती हैं कि कैसे इनके श्रृंगार हैं, क्या भक्तों ने इसी तरह किए हैं, यदि क्रिसमस के समय में हम भगवान को सांता क्लॉज के वस्त्र पहनाते हैं तो क्या हमें पता चलेगा कि ये भगवान है? तो ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और भगवान की स्थिति वृंदावन में जितनी उत्कृष्ट है, वो ब्रजवासी वस्त्र द्वारा, और वस्त्र है, कपड़े नहीं, वस्त्र द्वारा ही इनकी श्रृंगारित्व होता है। मॉडर्न ढंग से हम सेवा करते हैं, वो तो कहीं लिखा ही नहीं। उसी तरह भगवान के प्रति प्रचार के लिए या भगवान के प्रति ज्यादा आकृष्ट बनाने के लिए, भगवान तो ललित कला के स्वामी हैं, 64 कलाएं हैं, तो ये कला श्रृंगार की भी है, तो भक्त लोग थोड़ी मर्यादा में रह कर श्रृंगार करें, वो ठीक रहेगा। इस बारंबार कहा जाता है भगवान को आंखों से नहीं देखना, बारंबार कहा जाता है, तो किस द्वारा देखे? कानों से देखने का प्रयत्न करो, कि भगवान की बातें तो समझो पहले। तो श्रद्धा का विकास होना चाहिए। जितनी मान्यता रखते हैं उतनी ही श्रद्धा को मान लेते हैं, वो ठीक नहीं है। ये विकास के लिए होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम ना द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से बताते हैं के बरहाई ते नयनम नराणा लिंगानी विष्णोर न निरीक्षतो ये पादौ नृणाउ तव द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर यो। कहते हैं बरहाई ते, यानी के ये मोर होता है, मोर के पीछे, मोर के पीछे पेंट किए हैं, पेंटेड प्लूम्स कहते हैं, आंख जैसे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो जिस व्यक्ति अपने आंखों का सदुपयोग भगवान के ये विशिष्ट वेशभूषा से लेकर मुखारविंद सब कुछ, चरण कमल से लेकर ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, सीधा देखना नहीं। कुंती देवी तो बुआ थी, भगवान को किस तरह देखती हैं आप बता। वो अपने अपने भाव में व्यक्ति दिखता है, लेकिन तो वो तो विशुद्ध जानकारी के बाद ही होता है। नमः कमल पंक, नमः पंक जा रहे, तो अंत में आता है नमः कमल मालिने, नमः कमल नेत्राय। क्या नमः कमल नाभाय, वो नाभि से शुरुआत करती, नमः कमल नाभाय, नमः कमल मालिने, नमः कमल पंक नेत्राय। ओके, नमः पंकजांग्रये। तो कमल की उपमा दी गई है, कमल विशुद्ध स्वरूप है, कीचड़ में उगता है, लेकिन अपने पर कीचड़ की एक बूंद या पानी की बूंद नहीं टिकने देता। तो ये भौतिक संसार के कीचड़ में जो व्यक्ति कमल की तरह तरता है, इसकी बात है। भगवान को तो कोई भौतिक त्रिगुणात्मक भाव तो छूता नहीं जो कीचड़ कहलाता है। तो कुंती देवी जिस तरह देखती है, ये सिर्फ शोभा की दृष्टि से नहीं बोलती, सिर्फ श्रृंगार की दृष्टि से नहीं बोलती, चरित्र बताने के लिए कमल की उपमा है। हर एक आत्मा को भी कमल की उपमा दी जाती है, और उसको संसार में रहते हुए कमल की भांति जीना है, कि कीचड़ की एक बूंद भी अपने पर छिड़के नहीं। हम तो इतने दूषित हुए हैं कीचड़ से ही, फिर भी एक कीचड़ को साफ करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आंखों की सुंदरता यदि देखें और उसकी उपमा हम मोर के पीछों के समान करें तो क्या फायदा। दिखती अच्छी है लेकिन देखने में सचमुच असमर्थ है, मोर के पीछे थोड़े देख पाते हैं। इंद्र जैसा स्वर्ग का राजा भी मुश्किल में पड़ जाता है। अपनी गुरु की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, गुरु ने श्राप दे दिया, जा तेरे सारे शरीर पर 1000 योनियां फुट निकले। जहां भौतिकता का शरीर निकलता है, ऐसे योनियां सारे शरीर पर, वो तो लज्जित हो गया। क्या रे रे ऐसा साहब, तो इतना गर्हित काम करता है, उसके अनुसार उसको सजा मिलती है, श्राप मिलता है। तब अकल ठिकाने आई कि कुछ तो करो, तो सारी योनियां की आंख बना दी। तो हजार आंख से देख, अभी इंद्र का दूसरा नाम सहस्त्राक्ष कहलाता है, सारे शरीर पर हजार आंख होती। तो जिस हेतु के लिए जिस तरह देखने का प्रयत्न करना होता है तो उसके पीछे समझदारी, और भौतिक समझदारी द्वारा नहीं लेकिन आध्यात्मिक समझदारी का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। जीव अपने स्वभाव के अनुसार देखने का प्रयत्न करे, ये स्वभाव त्रिगुणात्मक भाव से गंदा हो गया तो ये भाव की तो आवश्यकता है ही नहीं। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तर मंदिर मार्जनाद युक्तंश्च भक्तांश्च युञ्जतो भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये सब ऐसी प्रवृत्ति में हमें रुकना पड़ता है, और एक कुशल गुरु अपने शिष्यों को इसी तरह नियोजन करता रहता है। नियोजन यानी उसमें एंगेज करता रहता है, यही प्रवृत्ति। और जब मंदिर में आए तब हम सेवा अपराधों से जागृत रहे। इसके पीछे भी ये भावना है कि भगवान के सामने हम दांत निकाल कर हंस नहीं सकते, क्योंकि जब भगवान के दांत निकलेंगे तब पता चलेगा कि भगवान के दांत दिखाई देते हैं कभी नहीं, बताते ही नहीं कोई। जब भगवान दांत निकालेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। एक तो दिमाग तो चक्राव में यशोदा माता का भी तो चढ़ गया था, तो क्या क्या नहीं होगा। इसीलिए हंसी से दांत निकाल कर भगवान के सामने खड़ा भी नहीं रहना। जो जो दांत बताता है भगवान उसको मार ही देते हैं। दसवें स्कंद में तो बहुत ऐसी लीला आती है, अहंकार से द्विविड जो गोरिला था उसने भी दांत निकाले तो बलराम जी ने एक मुक्का मारा, गया काम से। भगवान के सामने दांत नहीं निकाला, यानी कि ये जो सेवा अपराध है उसके पीछे काफी हमें गौर करना चाहिए कि ये सारे अपराध हमें भगवान को देखने में बाधा डालता है, हमें ना समझ बना रहता है। तो जिस तरह भगवान के सारे अंगों को देखने के लिए पद्धति दी गई है, हमें चरण कमल से ऊपर उठकर देखना होता है। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप बताया है। पहले दो स्कंद भगवान के चरण का है, तो चरण से हमें आश्रय लेकर अन्य अंगों को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। जो अपनी स्थिति को जानकर फिर भी स्थिति के अनुसार वफादारी भगवान पर बताना चाहते हैं तो अवश्य चरणों से ऊपर देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लोग तो आकर सीधे मुखारविंद से दर्शन करते, वो तो दसवां स्कंद है, और प्रभुपाद कहते हैं कि दसवां स्कंद में उतरने की कोई लायकात तो बताओ। जब तक काम विकार नहीं नष्ट हुआ है तो राधा कृष्ण की लीला नहीं करनी चाहिए। हृदय रोग काम अपहनोति नहीं हुआ है तब तक राधा कृष्ण की लीला समझने में भी हमारे मुश्किल है। यानी कि भगवान की राधा कृष्ण की लीला समझते या सुनने में यदि आती है और काम विकार पैदा करती है तो वहां हमें तुरंत सावधानी से बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखने देखने में फर्क पड़ता है। जो भगवान के कहे अनुसार यह पश्यति सब पश्यति, इस भगवान के बताया अनुसार जो देखने की चेष्टा करता है वही सही देखता है। जिस तरह देखना चाहिए उस तरह देखो, जिस तरह देखना नहीं चाहिए तो आंख फोड़ दो। क्या बिल्व मंगल ठाकुर ने आंख नहीं फोड़ी थी? ऐसी आंखों से भगवान के कैसे दर्शन हो पाते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं प्रेम का अंजन जिसकी आंखों में है, यदि भक्तिमयी सेवा प्रेममयी सेवा को भक्ति कहते, यदि जो भक्त नहीं है उसकी आंखें में प्रेम का अंजन नहीं होता, सिर्फ काजल का अंजन होता है। प्रेम का अंजन डालना है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, यह आंखें तो भक्ति की बनती है, आंखें भक्ति की बनती है। तब भक्ति के अनुसार भगवान के साथ देखने का और अन्य व्यवहार हो सकता है। और जो संत महात्मा है, जो विशुद्ध हुए हैं, अपनी अपनी भक्ति के प्रकार में जो स्थित हुए हैं, तो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, इनको तो अपने ही हृदय में झांक कर देखना होता है। चमड़ी की आंखों से देखकर संतोष मानना इनका काम नहीं है। तो ये तो ध्यान की बात आ गई है। अपने ही हृदय में परमात्मा का ध्यान विशुद्ध भक्ति में आता है। यदि ध्यान नहीं आएगा, ध्यान में भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप चतुर्भुज नारायण के रूप में होता है, सीधे कृष्ण के रूप में नहीं होता है। वदन्ति तत्वविदस्तत्वं यदज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये क्रमानुसार क्यों बना? ज्ञान की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन एक सीधी भगवान की विशुद्ध भक्ति के प्रयोग में ज्ञान अपने आप आएगा, ध्यान भी आएगा। तो हम तो ध्यान लाते नहीं, आपको ध्यान में लाने के लिए दूसरी दीक्षा देते हैं जो ब्राह्मण दीक्षा कहलाती है। उसमें 5 गायत्री दी जाती है, हर एक गायत्री पर ध्यान देना होता है, मेडिटेशन टाइम। उसके लिए तो बैठकर ही गायत्री करनी चाहिए, क्यों ध्यान लगाने में? सावित्री गायत्री होती है, गुरु गायत्री होती है, गौर गायत्री होती है, गोपाल गायत्री होती है, और काम गायत्री होती है। ये भाई काम गायत्री का अर्थ क्या है? यहां तो नहीं बता सकते, लेकिन अपनी ही काम वासनाओं पर जीतना है। जब तक हृदय रोग काम अपनौती नहीं हुआ, ये हृदय का रोग है, अंतिम रोग है, जो भव रोग भी कहलाता है। अपनौती है, उसका विनाश नहीं हुआ हो तो राधा कृष्ण की लीला समझना नहीं चाहिए। ये एकांत की हरिर भक्ति उत्पाद तयात कल्पते, समाज में ऐसी भक्ति उत्पाद करती है। तो रूप गोस्वामी काफी शिक्षा इस हकीकत के लिए दी है। तो ऐसा प्रशिक्षण इस्कॉन में मिलता है, उसमें बाईपास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि राधाकुंड के बाबा जी ये सब उसके पास दौड़ते हैं सुनने के लिए। बहुत सारी लीला की बातें होती हैं ब्रजवासियों, ऐसा साहस, ये तो दुस्साहस कहलाता है, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो लिंगानि विष्णोर निरीक्षते ये, इसी तरह सारे अंगों के दर्शन करने के लिए जो आवश्यक आंख है वो हृदय में होती है, क्योंकि आत्मा हृदय में है। अब कौन सा हृदय की बात कर रहे हैं, वो तो ब्रह्म संहिता में देखना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि भगवान भी हृदय में रहते हैं और जीव भी हृदय में रहता है। तो ये धबक के हृदय को ही हृदय कहेंगे। हृदय गुहायाम, गुहा ऐसी गुफा है, सीक्रेट प्लेस है, सब कोई नहीं जा सकते हैं वहां। साधु मुनि ध्यान धरने के लिए गुफा में जाते हैं, सिर्फ रहने के लिए खाना पकाने के लिए नहीं जाते गुफा में, ध्यान धरने के लिए गुफा। तो हृदय की गुफा कौन सी है, जहां चेतना का उद्गम होता है, वो जीव स्वयं अपने आप पर केंद्रित करता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जो सारी शक्ति कहां से आती है, स्वयं में से नहीं आती, देने वाला उसके हृदय में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजहन। तो जीव के, ये तो सूक्ष्म जीव है, लेकिन सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म भगवान बन सकते हैं इनका, तो वो परमात्मा जीव के हृदय में है। जब वहां तक पहुंच पाते हैं समझदारी से और ध्यान से, तब दर्शन हो पाता है, तब विद्यते हृदय ग्रंथि। अपने हृदय में सारी ग्रंथियां जो इस गुफा में नहीं जाने देती थी, ये सब छूट जाती है, सब टूट जाती है। विद्यते हृदय क्षीयन्ते सर्व संशया, ये सारे संशय प्रश्न रहता ही नहीं। और क्षयन्ते चास्य कर्माणि, ये योगी कैसा है, वैसे भी हलता चलता पर लेकिन अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कर्म पूर्व कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। भक्ति का कर्म कोई कर्म नहीं कहलाता, भक्ति चालू रहती है, सिर्फ भक्ति के लिए अपनी मर्यादा में रहकर ही वो कर्म करता है, जिससे कर्म बंधन नहीं पड़ता। तब विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मा ईश्वरे, वो खुद अपने सामने परमात्मा से फेस टू फेस देख सकते हैं। ये आत्म साक्षात कहलाता है और भगवत साक्षात्कार कहला। और जिस भाव तक विशुद्ध भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उस भाव तो गोलोक वृंदावन तक भी ले जाएगा। मुक्ति तो कहां आगे रह गई वो पता ही नहीं चलेगा। तो इसी तरह ये जो देखने की कला है भगवान बताते हैं, और उसके अनुसार हमें अनुभव करना है। तो तो सर्वप्रथम आदव श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। और आसक्ति भाव और प्रेम पैदा करने में कितनी रगड़ होगी जानोगे? रगड़ के लिए तैयार होना है। तो भक्ति का विकास क्रमानुसार होता है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद भवंती रद कर्ण रसायण कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। और रूप गोस्वामी भी कहते कि प्रादुर्भावे भवेत क्रम। ये जो नव श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंचना वो क्रमानुसार होता है। ये बंदर की विद्या नहीं है, वो सीधा जंप मार कर पहुंच जाता है प्रेम और दावा करता है कि हम भगवान के प्रेम, इनको हटाओ, वो हमारा कोई भला नहीं करेगा। तो इस तरह ये श्लोक में भगवान को देखने के लिए ये उपमा बताई है, जैसे आँखों द्वारा सभी अंग काम करते हैं, उसकी अध्यक्षता में काम करते हैं। अध्यक्षता यानी देखना, दिखते रहना कि सब ठीक होता है क्या नहीं, उसे अध्यक्षता कहते हैं। अधि अक्ष अध्यक्ष, अधि यानी जिम्मेदारी ज्यादा, अधियज्ञ इसमें भी निश्चयात्मक भाव प्रण यानी कि प्रतिज्ञा सर्वप्रथम आती है। अधिदेव अधियज्ञ ये सब की भाषा भगवद गीता में दी है भगवान। ये कौन आदिदेव होता है, कौन अध्यक्ष होता है? तो भगवान अधोक्ष जो है वो आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष जे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवान जो अंतर में है, जो राधा कृष्ण अंतर की स्थिति भगवान की है, अंतिम स्थिति भगवान की है, गोलोक वृंदावन की स्थिति है, वो अपने हृदय में ही प्रकट करनी होती है। अपने हृदय के भाव मन बुद्धि और अहंकार से परे होते हैं, वो भगवान के धाम में ले जाते हैं। जाने में कोई मुश्किल ही नहीं, यदि कोई कुशल गुरु के सानिध्य में हम आगे बढ़ रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कुशल गुरु हैं, सबके शिक्षा गुरु हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़कर और अपने से जो काफ़ी जानकार हैं ऐसे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, आपको किसी को कोई प्रश्न है इस संबंध में? भैया माइक कहाँ है देने? कोई गर्मी में प्रश्न नहीं करेगा ऐसा तो समझ रहे हैं। बैटरी नहीं है, जोर से बोलना। हरी बोल।
आपने कहा कि जब तक हमारे अंदर काम वासना होता है तब तक हमें 10-20 कर्म का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने कथा में बोली तो प्रश्न क्या था कि काम वासना से कैसे दूर हुआ जाता है, उसमें कहा कि काम वासना जो है वो केवल नारायण और कृष्ण शरीर में नहीं है, तो हम जब तक है तब तक तो हमारे अंदर काम वासना रहेगी, काम नहीं करेंगे।
ये अनादिकाल से भौतिकता में आने का कारण है, जो ईर्षा द्वारा ऐसी इच्छा होती है भोग विलास की, वो दूर करना वो भक्ति के द्वारा ही, भगवान के नाम में ही शक्ति है। कैसे दूर हो सकती है? तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम करो, बस ठीक है। और हाँ, प्रश्न भी बोलना चाहिए, आपको वहां से सुनाई देगा, बाहर बहुत आवाज आती है। बोलो। डेफिनेटली उसका कारण क्या है पता है? उत्तम अधिकारी लोग इन ऐसे एक्सीडेंटल फॉल डाउन से भी सचेत रहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी को इतनी 80 साल की उम्र में राधा रानी को प्रार्थना करते देखा है, हे माँ मेरी रक्षा करना, मैं कभी गिर न जाऊं। जो अनादिकाल से रोग चिपके आए हैं और भौतिक शरीर की अवस्था बारंबार प्राप्त करते हैं, तीन गुणों के वश में रहते हैं, तो इनको दूर करने में तो हरिनाम ही सफल होगा। नहीं तो यज्ञ दान तप क्रिया तीन युगों में थी, कलयुग तो बेकार है, भगवान के नाम के अलावा कोई सीधा उपाय है नहीं। इसका मतलब ये रहा कि हरिनाम अगले युग में भी तो मुख्य ही था, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान तप क्रिया की आवश्यकता थी। एक लाख साल की आयुष्य सत्ययुग में थी तो क्या आसान था उस समय? टाइम पास करने के लिए हजारों वर्ष तपश्चर्या करते थे, आप एक साल भी नहीं कर सकते हैं, 45 दिन भी नहीं कर सकते, खत्म हो जाओगे। भगवान के नाम की प्राप्ति, हाँ इन लोगों को उस समय बहुत आसान था। कर्दम मुनि के लिए कहा जाता क्योंकि आप तो भगवान को हृदय में लेकर घूमते फिरते हैं, आप इनसे प्रार्थना करो, देवहूति कहती है कि मेरे उद्धार के लिए एक बेटा बन के भगवान आ जाए। बुद्धि तो वहां है और वही कपिल देव कहते अनुक्रमश्यति श्रद्धा रति अनुक्रमशति, पर ये विशुद्ध भक्ति के लिए श्रद्धा। हम तो श्रद्धा सत्संग में प्राप्त करते हैं, थोड़े आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसकी रगड़ मुश्किली देती है हमें। तो आवश्यक श्रद्धा पैदा करने के लिए भी रगड़ होगी। हमारी श्रद्धा में तो बहुत सारा मिक्सचर पड़ा है। सतधाना परम सत्य पर बुद्धि लगाकर हमें स्वीकारना है। अश्रद्धाना पुरुषास्य धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्नु निवर्तन्ते मां मृत्यु संसार वर्तमान। भगवान कैसे श्रद्धा की बात करे, तो उसका पर्याय चैतन्य चरितामृत में मिलेगा कि श्रद्धा शब्द सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृतम। भक्ति के आगे दूसरी श्रद्धा कमजोर पड़ती है, लेकिन ऐसा मन में ठान कर कि भगवान की भक्ति और अनुकूल भक्ति और तीव्र भक्ति ही करके जब मैं भगवान की सेवा करूंगा 24 घंटे, क्या उसके लिए सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र आवश्यक नहीं है? नहीं तो हरिदास ठाकुर ने कैसे किया, 22.5 घंटे सिर्फ भगवान का नाम जपते थे, 1.5 घंटे में खाना पीना कपड़े धोना सब कुछ हो जाता था। तीव्र तो आवश्यक श्रद्धा, ऐसे नहीं कि अनावश्यक चीजें अपनी श्रद्धा में उमेर और उसको शुद्ध श्रद्धा कैसे बोलेंगे। हाँ, ये तो बुद्धिपूर्वक विचार करना है। श्रद्धा कभी मन से पैदा नहीं होती, मन तो ठकावा है, इसलिए श्रद्धा बुद्धि के हाथ में जानी चाहिए। बुद्धि नहीं है तो भगवान के आवश्यक बुद्धि मैं दे दूंगा, लेकिन तुमसे इस ढंग से तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम तो करो, बाद में मैं दूंगा। श्रद्धा का विषय बराबर रगड़ करने वाला है, कुछ भी होता है तो हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है, कुछ भी होता है पहले श्रद्धा की ही होती है। हम तो कितनी फरियाद करते हैं, ए साख में मसाला नहीं डाल रहा है, ये क्या है, वहीं से पांचे पांच इंद्रियां इतनी सदैव बन जाती हैं कि खाने पीने से लेकर बाकी की तो पॉलिटिक्स कितनी होती है, इसमें श्रद्धा डूल हो जाएगी, पता है, सावधान। इस्कॉन में रहना आसान है लेकिन प्रगति करना जरा सावधानी पूर्वक करना होता है। और कोई प्रश्न है? हरि बोल। यमराज के सेवक वो अपने मालिक पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, कोई एक विशुद्ध भक्त पर श्रद्धा रखने वाला, यमदूत तो चार विष्णु दूतों का भी दर्शन करते हैं और उसका बखान करते, अरे ये तो कैसे सुंदर शरीर वाले हैं, क्या मधुर भाषा बोलते, अपने मालिक से कहते हैं ये कौन है, आश्चर्य की दृष्टि से देखते। तो स्वाभाविक रूप से देखें तो यमदूत यमराज का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन उनको यमराज एक विशुद्ध भक्त हैं, इनका भी तो संग मिलता है। ये यमदूत पर तो विशुद्ध भक्त ही कृपा करते हैं। एक बार जनक महाराज उस रास्ते से जा रहे थे तो नरक में एकाएक सुख शांति का अनुभव करने लगे। नरक में कोई सुख शांति भोगता है क्या? सब अपनी अपनी सजाओं में पीड़ित होते हैं। तो ये अचानक कैसा कैसा हुआ? तो कहीं यमदूत बाहर आके देखते हैं, अरे ये तो कोई व्यक्ति है जो खड़ा है। तो यमराज भी देख रहे हैं, उन्होंने पहचान लिया, जनक राज आओ आलिंगन किया, अरे आप कैसे विशुद्ध भक्त हैं, आपको हवा भी आपके शरीर को छूकर जब अंदर जाती है तो सब कुशल हो गया, ये नरक नरक नहीं रहा, विशुद्ध भक्त के होते हुए नरक नरक होता है क्या? इसलिए यमराज भक्त को सजा नहीं देते, दूसरों को देते हैं जो अभक्त है। भगवान विष्णु का दुश्मन है, न जानता है, न मानता है, न कोई भक्ति करता है, तो ऐसे लोगों को ही सजा होती है। या तुम लोग तो भक्त हो तो हरि बोल। नहीं जानते थे लेकिन नाम नहीं लेता था। अनजाने में मृत्यु के समय पर जो नाम लेता है ना वो काफी काम में आता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति मद्भावम जाति नात्र संशय। ये कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर का त्याग करता है तो वो मेरे भाव को पाता है। अब ये झूठा पड़ेगा यदि यमराज, हाँ यमराज तो समझ गए, गलती से भी नाम लेने वाला तर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा मौका मिलता है उसे। हाँ यमराज को जब पता चला तो कहाँ के कहाँ, भगवान सर्वोपरि है, मेरे मालिक हैं, तो इनका नाम भी उसके बराबर होता है। हमारा नाम भगवान के नाम बराबर नहीं, इसलिए सेवकों का कोई मंत्र नहीं जपते, भगवान का ही मंत्र जपते हैं। जो भक्त है भक्ति सिखाता है। हनुमान जी क्या सिखाते हैं? भक्ति। तो हनुमान जी का मंत्र क्यों पढ़ते हैं? शिव जी क्या बताते हैं? भक्ति। तो शिव जी स्वयं माला लेते हैं, हनुमान जी स्वयं माला लेते हैं, तो हम लोग हनुमान जी और शिव जी के पीछे पढ़ते हैं, भगवान को तो याद करते ही है? शंकर सुवन केसरी नंदन, एक शंकर सुवन क्या है? शिव जी का ही तो अंश। तो देवता और भगवान में अंतर यही है। भगवान मुक्ति के दाता हैं, देवता ब्रह्मा जी की दसवें प्रकार की सृष्टि में सृजित हैं, उनका सृजन हुआ। जो सृजित हैं उनकी सेवा नहीं की जाती है, सर्जनहार की सेवा की जाती है। सही ना? चलो और कोई? अरे तो स्टोर हाउस है क्या? बोलो जल्दी। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कलयुग में एक किसी को तीसरे नेत्र पर जाने का कहाँ लिखा है? कलयुग में तो हरिनाम है, ये नेत्र खुलते ही नहीं, पता है? कलयुग में शिवजी के खुलेंगे, पार्वती के खुलेंगे, गणेश के खुलेंगे, लेकिन दूसरों के कहाँ खुलेंगे? तीसरा नेत्र जो ज्ञान चक्षु कहलाता है, वो खोलने के लिए तो पहले शास्त्र चक्षु चाहिए। शास्त्र चक्षु ज्ञान चक्षु में पलटता है, ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु में पलटता है, तब अर्जुन देख पाया है भगवान के विराट रूप, वो भी भौतिक रूप। सारी सृष्टि एक ही जगह पर, वो अपने रथ पे ही देख पाता है, ऐसा भगवान ने विश्वरूप बताया, भौतिक रूप है। क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो तो हृदय की आंख, हृदय की आंख क्या खोपड़ी में पड़ी है क्या? वो तो चेतना जहां से उद्गम है जीव, जीव के साथ परमात्मा भी है, अकेला नहीं, कोई जीव को भगवान अकेला नहीं छोड़ते। ये भगवान दोनों मां और बाप है, क्या अपने बच्चे को अकेले छोड़ते हैं कभी? कितने आसक्त होते हैं फिर भी ईर्षा द्वारा हम दूर हो जाते हैं इनसे। इसीलिए तो भगवान को अपना विस्तार करके रहना पड़ता है, जो ना समझ को पता ना चले, ऐसी गहरी स्थिति में रहना पड़ता है। जब इस मनुष्य जीवन में अपने पूर्व सुकृति के अनुसार जब मौका मिलता है, तब माँ बाप बने हुए भगवान को अपना बच्चा लौटाएगा, उसकी आश्वस्तता देती है। भगवान माँ बाप के रूप में यदि इतनी जल्दी लौटाए उसकी भावना करते हैं, तो अपने भक्त के पास सब कुछ ले लेते हैं। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनै, यानी कि मेरे पर आश्रित रहने दिए रहने बिना कभी वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा। भक्त स्वीकार करता है तब रहता है पूर्ण श्रद्धा से। तो सर्वधर्मान परित्यज्य हो गए, भगवान की शरण ले ली, तो कोई चिंता का विषय नहीं रहता। ठीक, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।